केवल धर्मी ही आशा के साथ मसीह की वापसी का इंतजार कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 1 से 21। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे परमेश्वर अपनी भयानक विपत्तियों को इस संसार में लाएगा। इस अध्याय में अब हम देखते हैं कि मसीह और उसकी महिमामय सेना मसीह विरोधी की सेना के खिलाफ लड़ रही है और उस पर जय पा रही है। जानवर और उसके सेवक को जीवित आग की झील में फेंक दिया गया है। शेष मसीह विरोधी सेना को प्रभु के मुंह से निकले वचन की तलवार से मार डाला है और इस तरह अंत में शैतान के खिलाफ उसकी सारी लड़ाई को समाप्त कर दिया। इस अध्याय के सार को तीन मुख्य विषयों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, महान विपत्तियों के न्याय को इस संसार में लाने के लिए रैप्चर हुए संतों द्वारा परमेश्वर की स्तुति। दूसरा, मेमने के विवाह भोज के आगमन की घोषणा। और तीसरा, यीशु मसीह की सेना के साथ स्वर्ग से प्रभु का अवतरण। हम सभी को यह समझना चाहिए कि परमेश्वर निश्चित रूप से और जल्दी ही वह सब कुछ पूरा करेगा जो उसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के माध्यम से हमसे कहा है। परमेश्वर का न्याय। जो लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं और इस प्रकार विश्वास के द्वारा परमेश्वर के लोग बन गए हैं, वे उन्हें दुनिया के सभी पापों से बचाने के लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आइए हम वचन 3 से 5 पर एक नजर डालें। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। तब 2400 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमेन, हालेलुया। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। इब्रानियों अध्याय 9 वचन 27 हमें कहता है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, मनुष्य को एक बार परमेश्वर के सामने न्याय किया जाना है, लेकिन इस न्याय की सजा अंतिम है और इसे बदला नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में, अपने पापों के लिए सभी के एक बार न्याय के साथ परमेश्वर पापियों को हमेशा के लिए जलती हुई आग में फेंक कर अपना अनंत न्याय प्रदान करेगा। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि उसका धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। कुछ लोग सोच सकते हैं और यह कह सकते हैं, एक बार जब आप मर जाते हैं तो इसका अंत होता है, लेकिन यह मनुष्य का अपना विचार है, परमेश्वर का नहीं, क्योंकि प्रत्येक के पास शरीर और आत्मा दोनों है। चाहे लोग परमेश्वर पर विश्वास करें या ना करें, वे सभी सहज रूप से जानते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है और देर सवेर उन सभी को उसके सामने उनके पापों के लिए न्याय किया जाएगा। चूंकि लोगों के लिए आत्माओं का एक क्षेत्र मौजूद है, वे जानते हैं कि परमेश्वर जो उनकी आंखों को देख नहीं सकता, उसके बावजूद उसका अस्तित्व है। शरीर की आंखों से देखा जा सकने वाला क्षेत्र हमेशा के लिए नहीं रहता है, लेकिन सत्य का शाश्वत क्षेत्र मौजूद है जिसे हमारी आंखों से नहीं देखा जा सकता। केवल धन के बारे में सोचते हुए और केवल भौतिक लालच का पीछा करते हुए इस धरती पर भौतिक समृद्धि मनुष्य जाति के होने का कारण नहीं हो सकती। इसका असली उद्देश्य पूरे ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानने और उसके द्वारा दिए गए पानी और आत्मा के सुसमाचार को जानने और विश्वास करने का द्वारा आशीर्वाद के अनंत क्षेत्र में प्रवेश करना है। हमें न केवल यह जानना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें क्या बताया है, बल्कि हमें उस पर विश्वास भी करना चाहिए। केवल अपने ही विचारों पर विश्वास करने और भरोसा करने से हमें नरक में नहीं जाना चाहिए। हमारे पापों के लिए अनंत पीड़ा का सामना करने से पहले हमें अपने सभी पापों से क्षमा प्राप्त करनी चाहिए और इस पृथ्वी पर यीशु द्वारा दिए गए पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हुए अनंत जीवन प्राप्त करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस धरती पर जीवन बहुत छोटा है। जैसे सूरज रोज उगता है और अस्त होता है, वैसे ही हमारे जीवन की छोटी यात्रा बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। निरर्थक और व्यर्थ मानो हम ट्रेडमिल पर गहरे गिलहरी की तरह दौड़ रहे हैं। यहां तक कि अगर आपको 100 साल जीना है तो भी आप वास्तव में यह नहीं कह सकते कि आप इतने लंबे समय तक जीवित रहे। यदि आप अपने पूरे जीवन काल के दैनिक जीवन के छोटे छोटे दौरों को घटा दें, जैसे कि सोने, खाने, वॉशरूम में जाने और इस तरह के अन्य सांसारिक कामों को करने में बिताए गए समय को, तो वास्तव में आपके पास बहुत कम समय बचा है। जब आप उन चीजों को देखते हैं जो आप अपने जन्म से ही देख चुके हैं और जब आप उन लोगों से मिलते हैं जिनसे आप पहले मिल चुके हैं, आपके बाल पक चुके हैं और अचानक आप अपने आप को अपने अंत का सामना करते हुए पाते हैं। संतों के रूप में हमारा जीवन व्यर्थ क्यों नहीं है? इसका एकमात्र कारण यह है कि हम इस दुनिया में जन्म लेने के बाद उस प्रभु से मिले हैं जो पानी और आत्मा के माध्यम से हमारे पास आए हैं, उस पर विश्वास किया और इस तरह से हमारे सारे पापों से छुटकारा पाया। हम कितने भाग्यशाली और आभारी हैं। यदि प्रभु पानी और आत्मा के द्वारा हमारे पास न आया होता तो हम सब अनंत आग में प्रवेश करने और उसमें दुख उठाने के लिए बाध्य होते। जब भी मैं इस बारे में सोचता हूं तब यह मुझे डराता है और मैं एक बार फिर प्रभु को धन्यवाद देता हूं। नरक, जो शैतान की वजह से अस्तित्व में आया, सबसे भयानक जगह है जहां पीड़ा इतनी अधिक है कि कोई भी व्यक्ति मरना चाहेगा फिर भी वह ऐसा करने से सक्षम नहीं होगा। यह एक ऐसा स्थान है जहां आग और गंधक हमेशा जलते रहते हैं। यीशु द्वारा दिए गए पानी और आत्मा के सुसमाचार को सही रीति से जानने के लिए और इस प्रकार पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए पहले परमेश्वर के सेवकों से मिलना चाहिए जिन्होंने पहले ही पानी और आत्मा के इस सुसमाचार का सामना किया है और जो पहले से ही नया जन्म प्राप्त कर चुके हैं। एक मसीही के रूप में रहते हुए जो कोई भी पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा फिर से जन्म लेने और पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रश्न का उत्तर खोजना चाहता है वह पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके सब कुछ हल कर सकता है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का आत्मा उन सभी को उपहार के रूप में दिया जाता है जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके पाप की माफी प्राप्त करते हैं। केवल पानी और आत्मा के सुसमाचार में अपने विश्वास के माध्यम से अपने सभी पापों की क्षमा प्राप्त करने के द्वारा अपने दिलों में पवित्र आत्मा प्राप्त करने वाले यह कह सकते हैं कि वे यीशु में सही विश्वास रखते हैं और केवल वे ही इस विश्वास के साथ परमेश्वर के अनंत राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। कोई व्यक्ति धन्य है या शापित है यह इस बात से निर्धारित होता है कि उस व्यक्ति ने पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने के द्वारा पाप की माफी प्राप्त की है या नहीं। शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनना। जो लोग अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं और अपने पापों के निवारण की अपनी वर्तमान समस्या को हल करना चाहते हैं वे बुद्धिमान और धन्य है। यद्यपि किसी ने कमियों से भरा हुआ एक विचित्र जीवन जिया हो, यदि उसने पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास किया है और पाप की क्षमा और पवित्र आत्मा को हृदय में प्राप्त किया है तो इस व्यक्ति ने सबके सफल जीवन जिया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 4 और 5 कहता है, तब 2400 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवाद किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, अमेन, हालेलुया। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से डरने वाले दासो, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। यहां वाक्यांश उससे डराने वाले का अर्थ है कि यीशु मसीह के वचन को अपने दिल में स्वीकार करना और उसके मार्गदर्शन के अनुसार जीना। केवल वे लोग जिन्हें अपने पापों से माफ किया गया है वे स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर को देख सकते हैं और उसकी स्तुति कर सकते हैं। परंतु जिन लोगों ने इस प्रकार अपने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं की है वे नरक की धधकती आग में सहन करने और परमेश्वर को श्राप देंगे। आइए हम वचन 6-9 के साथ आगे पढ़े। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द सुना और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसके शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। यह यहां कहता है कि प्रेरित यूहन्ना ने स्तुति का शब्द सुना जो एक बड़ी भीड़ की आवाज की तरह लग रहा था, बहुत से पानी की आवाज और बड़ी गड़गड़ाहट की आवाज। यह आवाज और कुछ नहीं बल्कि उन लोगों की आवाज थी जिन्होंने पाप की क्षमा प्राप्त कर ली है और परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति का यह गीत सबसे पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर के शासन से अधीन आने, उसके द्वारा शासित होने और महिमा में उसके साथ रहने की अनुमति देने के लिए परमेश्वर की स्तुति करने के लिए बनाया गया है। इन सभी चीजों ने संतों को अत्यधिक प्रसन्न और हर्षित किया है और परमेश्वर को बहुत महिमा दी है, इसलिए वे केवल उनकी स्तुति करते हैं। यह चिल्लाते हुए, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। दूसरा, संत अपनी स्तुति करना जारी रखते हैं क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म का काम है। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ यह है कि जैसे परमेश्वर ने मनुष्य जाति से वादा किया है, यीशु इस पृथ्वी पर लौटेगा, उन लोगों से विवाह करेगा जिन्होंने उस पर विश्वास करके और नया जन्म लेकर पवित्र आत्मा प्राप्त किया है और उनके साथ हमेशा के लिए रहेगा। विवाह एक दुल्हे और उसकी दुल्हन का मिलन है। दूसरे शब्दों में, जब यीशु इस पृथ्वी पर लौटेगा तब वह केवल उन्हीं लोगों को स्वीकार करेगा और उनके साथ रहेगा जिन्होंने पानी और आत्मा से नया जन्म प्राप्त किया है। और इसका मतलब है कि वहां संतों के साथ हमेशा और हमेशा रहने के लिए अपने 1000 साल के राज्य और नए स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करेगा। इस दूल्हे के साथ रहने की दुल्हन की महिमा इतनी महान है कि वहां यह वर्णन से पार है। यह सोचकर ही हमारा दिल खुशियों से भर जाता है। जब वह संसार आएगा जहां यीशु मसीह राज्य करेगा, उसकी दुल्हनें अत्यंत प्रसन्न होगी जो शब्दों में वर्णित नहीं हो सकता है। जब वे अच्छे चरवाहे द्वारा शासित होंगे तो वे कितने खुश होंगे, क्योंकि यीशु मसीह संपूर्ण भलाई का दूल्हा है, इसलिए उसका राज्य पूर्ण भलाई और पूर्णता का होगा। वह स्वर्ग के राज्य पर राज करेगा। केवल एकमात्र सुसमाचार जो आपको स्वर्ग के लिए योग्य बना सकते हैं। पवित्र आत्मा प्राप्त करने और स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को केवल यीशु के बपतिस्मा और लहू में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु मनुष्य जाति के सारे पापों को अपने ऊपर उठाने के द्वारा सारे पापियों को उनके पापों से बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया था। उसने यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा लिया। इस प्रकार अपना बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद यीशु को स्वयं हमारे स्थान पर क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारे सभी पापों के लिए न्याय किया गया, मृतकों में से फिर से जी उठा और विश्वास करने वालों के लिए अनंत उद्धार का प्रभु बन गया। यह प्रभु अब पृथ्वी पर लौटेगा, अपने लोगों को गले लगाएगा जो विश्वास के द्वारा उसकी दुल्हन बन गए हैं, और उनके साथ हमेशा रहेगा। जो उसकी दुल्हन बन गए हैं वे अब एक नई पृथ्वी पर प्रभु के साथ रहेंगे, जो दुल्हनों के लिए एक शानदार और महिमामय आशीष है। इस प्रकार परमेश्वर के उद्धार पाए हुई संतान यीशु मसीह की सदा स्तुति करते हुए उसकी महिमा करेंगे। ये लोग जिन पर परमेश्वर का शासन होगा वे अपने सुख में आनंदित होंगे, और इस आनंद के लिए वे दूल्हे को सारी महिमा देंगे। पूरी मनुष्य जाति सृष्टि के समय से ही इस घटना की प्रतीक्षा कर रही है। यह घटना तब पूरी होती है जब यीशु वापस लौटते हैं, उन लोगों को उठाते हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त की है और उनके साथ रहते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए एक नया संसार बनाया है और हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। हमारा अस्तित्व इसके लिए है और इसके लिए हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं। जैसा कि मुख्य भाग हमें बताता है, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आपको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। परमेश्वर ने उन्हें जो यीशु पर विश्वास करते हैं स्वच्छ उत्तम मलमल पहनाया है। दूसरे शब्दों में, जो लोग इस वचन में विश्वास करते हैं उन्होंने पाप की क्षमा प्राप्त कर ली है और उनके हृदय बर्फ की तरह सफेद हो गए हैं। इस तरह यीशु मसीह की दुल्हने पहले से ही पानी और आत्मा के सुसमाचार के साथ तैयार की जाती है। इस पृथ्वी पर रहते हुए पानी और आत्मा के सुसमाचार को सुनने और उस पर विश्वास करने से यीशु मसीह की दुल्हन के रूप में फिर से जन्म लिया जा सकता है। यह विश्वास की आपको मसीह की दुल्हन बनाता है, और यही विश्वास ही आपको स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य बनाता है। वे लोग जो आशा में इंतजार करते हैं, मुख्य भाग में बताता है, धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज के लिए बुलाए जाते हैं। जिन लोगों ने अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली है उन्हें किस तरह के विश्वास से जीना चाहिए। जो दुल्हने अपने दुल्हे यीशु से मिली है और महिमा में जी रही है, उन्हें इस दुल्हने के साथ अपने मिलन के दिन की प्रतीक्षा करते हुए विश्वास और आशा में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जैसे जैसे दुनिया अंधकारमय होती जा रही है, वैसे वैसे उद्धार पाई हुई दुल्हनों की उम्मीद अभी भी बाकी है। यह आशा उस दिन की प्रतीक्षा करने के अलावा और कुछ नहीं है जब यीशु मसीह अपनी दुल्हनों के लिए नया स्वर्ग और पृथ्वी तैयार करके उन्हें लेने के लिए वापस आएगा। तब दुल्हा अपनी सभी दुल्हनों को फिर से जीवित करेगा और उन्हें अनंत जीवन देगा। जिस दुनिया में दुल्हे और दुल्हनों को हमेशा के लिए रहना है वह एक ऐसा स्थान है जो बुराई से मुक्त है, जिसमें कोई पाप नहीं है और कुछ भी घटी नहीं है। दुल्हने इस दिन का ही इंतजार करती है। यही कारण है कि हम में से जिन्होंने अपने सभी पापों की माफी प्राप्त कर ली है वे ऐसे विश्वास और आशा के साथ जीवन जीते हैं। जो दुल्हने अब वर्तमान युग में जी रही है, विशेष रूप से उनमें भी देह की कई कमियां है, परंतु जैसा कि 1 कुरिन्थियों 13:13 हमें बताता है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है, क्योंकि दुल्हे ने इस प्रकार अपनी दुल्हनों से प्रेम किया है। वह अपने बपतिस्मान से उनके सभी पापों को दूर करेगा और उन्हें अपनी सिद्ध दुल्हनों के रूप में स्वीकार करेगा। यह दुनिया अपने अंतिम विनाश की ओर भाग रही है और इसमें कोई आशा नहीं बची है, लेकिन जैसे जैसे सब कुछ विनाश के करीब आ रहा है, दुल्हनों ने अपना जीवन अपनी विशेष आशा के लिए जीना चाहिए। इस आशा की पूर्ति का समय अब निकट आ रहा है। पूरी दुनिया को अब भूकंप से ढहने का खतरा है। इस दुनिया में इस किसी के लिए प्राचीन काल के विलुप्त डायनासोर की तरह गायब होने का दिन नजदीक आ रहा है। अचानक यह दुनिया नाश हो जाएगी। हालांकि हर दुल्हन को आशा है, क्योंकि समय आने पर दुल्हनों के शरीर पूर्ण शरीर में बदल जाएंगे और वे प्रभु के साथ हमेशा और हमेशा के लिए रहेंगे, जो उनका दूल्हा बन गया है। इसलिए दुल्हनों को इस युग के सांसारिक लोगों को पानी और आत्मा के सुसमाचार का अधिक विश्वासपूर्वक प्रचार करना चाहिए। आइए हम परमेश्वर के सच्चे वचन पर विश्वास करें। यीशु हमें यूहन्ना अध्याय 3:5 में कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई पानी और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो फिर पानी और आत्मा का सुसमाचार क्या है? बाइबल हमें सबसे पहले बताती है कि पानी स्पष्ट रूप से यीशु के बपतिस्मा को संदर्भित करते हैं और उद्धार का प्रतिरूप है। 1 पत्रस अध्याय 3:21। जब यीशु 30 वर्ष का हुआ तो वह यूहन्ना के पास गया, जो यर्दन नदी में इसराइल के लोगों को बपतिस्मा देता था। यीशु हमें बताता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मनुष्य जाति का प्रतिनिधि था और पुराने नियम का अंतिम महायाजक था। इस यूहन्ना से मिलकर यीशु ने उससे अपना बपतिस्मा प्राप्त किया, जिसने परमेश्वर की सभी धार्मिकता को पूरा किया। इस प्रकार यीशु ने जो बपतिस्मा प्राप्त किया वह अनंत उपहार था, जिसके द्वारा संसार के सभी पाप स्वयं मसीह पर पारित हो गए थे। पवित्र आत्मा के माध्यम से यीशु का देह धारण, उसका बपतिस्मा, क्रूस पर उसका लहू और मृत्यु और उनका पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण, ये सभी चीजें पवित्र आत्मा के कार्य थे। जब कोई यह विश्वास करता है कि यीशु इस पृथ्वी पर आया और उसने पानी और आत्मा के माध्यम से व्यक्ति के सभी पापों को एक ही बार में दूर कर दिया, तो वह व्यक्ति धर्मी व्यक्ति बन सकता है, पाप से मुक्त हो सकता है और मसीह की दुल्हन बन सकता है। यह मनुष्य के विचारों से पूरा नहीं हुआ है, बल्कि यह स्वयं परमेश्वर के विचारों से आता है। सच्चाई यह है कि पानी और पवित्र आत्मा मनुष्य के पाप से उद्धार के लिए 3 आवश्यक घटना है, और उनमें से कोई भी कभी भी निकाला नहीं जा सकता है। बाइबल इस पर स्पष्ट रूप से और ठीक रीति से 1 यूहन्ना के अध्याय 5 में विस्तार से बताती है। यह हमें बताता है कि ये 3 चीजें, पानी, लहू और पवित्र आत्मा, सभी एक ही बात पर सहमत है, और यदि उनमें से किसी भी चीज को निकाल दे तो पाप से हमारा उद्धार पूर्ण और स्वीकृत नहीं हो सकता है। जब हम इस सत्य को जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं कि इन तीनों, पानी, लहू और पवित्र आत्मा में विश्वास करना ही पूर्ण उद्धार है, तब हम यीशु के प्रेम को समझ सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं, जिसने हमें बचाया है, और इस प्रकार हमारे हृदय वास्तव में पूरी तरह से पाप रहित हो सकता है। प्रेरितों के काम अध्याय 2:38 में बाइबल हमसे वायदा करती है कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो फिर यह वचन क्या है जो हमें पवित्र आत्मा प्राप्त करने के योग्य बनाता है? यह कुछ और नहीं बल्कि यीशु के बपतिस्मा, क्रूस पर उसकी मृत्यु और उनके परमेश्वर होने, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का वचन है। उद्धार के इस वचन की वास्तव में मूसा और पुराने नियम के अन्य भविष्यवक्ताओं के लेखन में भविष्यवाणी की गई थी, और नए नियम के सभी 4 सुसमाचारों में इसे पूरा और प्रमाणित किया गया था। साथ ही इब्रानियों की पुस्तक में वर्णित एक ही बार में पूरा हुआ प्रायश्चित का अनंत उद्धार बार बार परमेश्वर की धार्मिकता की गवाही देता है, जिसे हमने अपने विश्वास के माध्यम से प्राप्त किया है। यद्यपि इस पापी संसार में प्रत्येक व्यक्ति देह का जीवन जी रहा है, जो परमेश्वर के सामने बहुत कम है, उसे परमेश्वर द्वारा दिए गए पाप की क्षमा प्राप्त करनी चाहिए और अपनी आशा को स्वर्ग में रखकर अपना जीवन जीना चाहिए। यह परमेश्वर का उपहार है जो उसने मनुष्य जाति को दिया है। हमें जो यह अनुग्रह दिया गया है, उसे हम सभी को स्वतंत्र रूप से प्राप्त करना चाहिए। इस वचन में विश्वास करना ही हमारा प्रभु वापस आएगा, अपने नए राज्य का निर्माण करेगा और हमें उसमें रहने देगा। यही हमारी सच्ची आशा है। हमें इस आशा के साथ जीना चाहिए, और यही है जिस पर मैं सबसे अधिक विश्वास करता हूं। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में पाप कितना व्यापक है? नूह के जल प्रलय के समय की तुलना में इस युग के पाप कहीं अधिक है। नूह के समय में यह देखते हुए कि मनुष्य जाति के विचार हमेशा बुरे थे, परमेश्वर ने जल प्रलय के साथ पहली दुनिया को नष्ट करने का फैसला किया। नूह को एक जहाज बनाने के लिए कहा और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके इस जहाज में प्रवेश करने वाले को बचाया था। हालांकि परमेश्वर ने कहा था कि वह निश्चित रूप से पानी से दुनिया का न्याय करेगा, केवल नूह के 8 लोगों के परिवार ने उनके वचन पर विश्वास किया। इस प्रकार उन्होंने जहाज को 100 वर्ष की अवधि में बनाया और जल प्रलय से बचने के लिए उनमें प्रवेश किया। जब उन्होंने ऐसा किया तो परमेश्वर ने अपना न्याय पहली पृथ्वी पर लाना शुरू किया। आसमान में अचानक अंधेरा छा गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। शायद एक घंटे में ही पानी तीसरी मंजिल तक पहुंच गया होगा। 40 दिनों तक बारिश हुई जिसने पूरी दुनिया पानी में डूब गई। जिस तरह नूह और उसका परिवार इस विश्वास के साथ जहाज में दाखिल हुआ था कि एक नई दुनिया खुलने वाली है, आपको और मुझे इस युग में आशा के साथ जीना चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने परमेश्वर में विश्वास करके 100 वर्षों तक जहाज का निर्माण किया, मेरा विश्वास है कि हमें भी दृढ़ रहना चाहिए और सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने लिए एक जहाज बना ले। यह वचन हमें बताता है कि अपने विश्वास की रक्षा करने के लिए हमें पहले खुद को प्रभु को समर्पित करना चाहिए और सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। यद्यपि नया जन्म पाए हुए लोगों के पास आशा है, लेकिन उनके लिए कोई आशा नहीं है जो सुसमाचार में विश्वास नहीं करते हैं। सुसमाचार के इन विश्वासियों के लिए केवल निराशा है। भले ही लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करें या ना करें, फिर भी हमें उन्हें विश्वास के साथ इसका प्रचार करना चाहिए। वर्तमान युग एक ऐसा समय है जब लोगों को जल्द से जल्द इस सच्चे सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए। जो लोग उस सुसमाचार में विश्वास करते हैं जिसका हम प्रचार करते हैं, उन्हें खुशी मिलेगी, लेकिन जो इसमें विश्वास नहीं करते वे केवल शापित होंगे। बाद में अर्थात जो लोग सुसमाचार में विश्वास नहीं करते हैं वे मूर्ख हैं, जो परमेश्वर के अनंत न्याय को प्राप्त करेंगे और उन्हें नरक में डाल दिया जाएगा। अपनी उम्मीद मत खोइए। यदि धर्मी लोग कभी भी अपनी आशा खो देते हैं तो केवल मृत्यु ही उनका इंतजार करती है। यदि हमारे पास कोई आशा नहीं है तो हमारे पास जीने की न तो इच्छा होगी, न रुचि, न ही कोई कारण होगा। इसलिए आओ हम आशा के साथ जीवन जिए। आज के युग में जो यीशु पर विश्वास करते हैं और उस प्रकार नया जन्म प्राप्त करते हैं वे वास्तव में सुखी है। मनुष्य जाति के लिए उसकी एकमात्र आशा पाप की क्षमा प्राप्त करने की है, अर्थात पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के अलावा और कोई आशा नहीं है। जब लोगों को उनके सभी पापों से माफ कर दिया जाता है तो वे आशा रख सकते हैं और हमेशा के लिए खुशी से जी सकते हैं। लेकिन यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो केवल विनाश ही उनकी प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि वे पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं करेंगे। मैं आज की दुनिया में आशा के साथ इसलिए जी रहा हूं क्योंकि मुझे अपने सभी पापों की क्षमा प्राप्त हो चुकी है। यह मेरी आशा और प्रार्थना है कि आप भी इस आशा के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने आप को दुनिया के व्यर्थ विचारों में संलग्न न करें, बल्कि अपने जीवन को बुद्धिमान दुल्हन के रूप में जिए। अपने धर्मी भाइयों और बहनों से प्रेम करें, उन्हें मसीह में दृढ़ रहने में मदद करें, अपना विश्वास न खोए, दुल्हन की प्रतीक्षा करें और उससे मिलके जब वह अंत में आपको लेने के लिए आता है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने हमें अपनी महिमा में जीने के योग्य बनाया है।